सभी को भक्तिपूर्ण नमस्कार। भक्ति सत्संग कहते ही हम सभी को अपने परम प्रिय गुरुवर का ही स्मरण होता है, कारण इस भक्ति सत्संग के माध्यम से हम उनसे एकरूपता की अनुभूति ले सकते हैं। आज भी हम गुरुदेव जी से वो एकरूपता अनुभव करने के लिए प्रार्थना के माध्यम से उन्हें आर्तता से पुकारेंगे। हे गुरुदेव, आप हम सभी पर अखंड रूप से आनंद का वर्षाव करने वाले साक्षात आनंद स्वरूप है। हम सभी पर चैतन्य का वर्षाव करने वाले, चैतन्य से सराबोर करने वाले आप चैतन्य स्वरूप हैं। हे गुरुदेव, परमानंद की अनुभूति देने वाले चिदानंद स्वरूप भी आप ही है। हे गुरुवर, आपके स्मरण से, आपके स्पर्श से, आपके अनुसंधान से हम में विद्यमान चैतन्य शक्ति की वृद्धि हो। हे गुरु नारायण, आप साक्षात पवित्रता की परम पावनता की मूर्ति है। आपकी परम पवित्रता तथा आपके पवित्र अस्तित्व के कारण ही संपूर्ण विश्व शुद्ध और पवित्र होने लगा है। हे गुरुदेव जी, आपके दिव्य अस्तित्व और सिखाई साधना हमें मोक्ष प्रदान करने वाली अमृत धाराई है। उस साधना के चैतन्य से, ऊर्जा से हम सभी भव बंधन से मुक्त होने की अनुभूति ले रहे हैं। हे गुरुवर, आपका स्मरण, आपका नाम, आपसे अनुसंधान हमारा अंतरंग व्याप ले, हम इस पवित्रता की अनुभूति ले पाए, ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना करते हैं। अब हम श्लोक के माध्यम से गुरुदेव जी को आर्तता से पुकारेंगे। उस माध्यम से हम हृदय की परिशुद्धता की अनुभूति लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को भक्तिपूर्ण नमस्कार। प्रयागराज में महाकुंभ पर्व का आरंभ हो रहा है। विश्व की सबसे बड़ी इस यात्रा का उत्साह विश्व के प्रत्येक जीव के मन में है। इस कुंभ मेले के निमित्त से संपूर्ण विश्व का वातावरण ही बदल गया है। सर्वत्र का वातावरण चैतन्यदायी हो गया है। इसी दिव्य वातावरण की अनुभूति कुंभ पर्व के संपूर्ण कालावधि में लेंगे। प्रत्यक्ष कुंभ पर्व में उपस्थित जीवों के साथ अन्य सर्वत्र के जीवों को भी इस महाकुंभ पर्व का अधिकाधिक आध्यात्मिक लाभ होने के लिए हम भक्ति सत्संग द्वारा दिशा दर्शन लेंगे। जो जीव कुंभ पर्व में प्रत्यक्ष सम्मिलित हुए हैं, उन जीवों को उनके भाव के अनुसार एक सहस्र गुना लाभ होने वाला ही है। परंतु जो प्रत्यक्ष वहां नहीं जा पाए, ऐसे जीवों को भी किस प्रकार इस कुंभ पर्व का एक सहस्र गुना लाभ हो सकता है, इसकी व्यवस्था भी भगवान ने कर रखी है। अध्यात्म का एक सिद्धांत है, स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म श्रेष्ठ। इस सिद्धांत द्वारा भगवान ने हम सभी को सीख दी है कि जो इस कुंभ मेले में तन से यानी देह से उपस्थित नहीं रह पाए, वे मन से मानस रूप से निश्चित ही सम्मिलित हो सकते हैं। कारण मन को कोई बंधन नहीं है, इसलिए हम घर बैठे भी अधिकाधिक साधना का प्रयत्न कर अधिकाधिक गुरु सेवा कर इस महाकुंभ पर्व का लाभ ले सकते हैं। कुंभ पर्व के पुण्य अवसर पर दूर दूर से श्रद्धालु पवित्र तीर्थ पर एकत्र आकर देवनदी गंगा का पुण्यदायी स्नान करते हैं। ऋषि मुनि और संत महात्माओं के सत्संग से, उनके प्रवचनों से ज्ञान प्राप्ति करने का अवसर उन्हें मिलता है। इस प्रकार उनकी साधना को दिशा मिले और आध्यात्मिक प्रगति साध्य हो, यही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुंभ मेले का प्रयोजन है। हिमालय की गुफा में ध्यान धारणा करने वाले सिद्ध पुरुष, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा करने वाले परिव्राजक अर्थात सन्यासी एवं विविध आखाड़ों के संत महंतों के कुंभ मेले में दर्शन होते हैं। उनके संपर्क में आने पर ध्यान में आता है कि वे ज्ञान और अनुभवों का साक्षात हिमालय ही है। ऐसा होते हुए भी उनकी नम्रता और प्रेममय दृष्टि सभी को समाहित कर लेने वाली सागर समान विशाल होती है। ये कुंभ पर्व उनके दिव्य सत्संग का लाभ लेने का अवसर है। कुंभ पर्व में स्नान करने का महत्व अनन्य साधारण है, उस विषय में आप समझ लेंगे। उससे हम ये सीखेंगे कि हम स्थूल स्तर पर अथवा मानस रूप में उसका कैसे लाभ ले सकते हैं। कुंभ पर्व अत्यंत पुण्यकारी होने से उस काल में कुंभ क्षेत्र में स्नान करने पर अनंत पुण्यफल मिलता है। इसलिए करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत उस स्थान पर एकत्र होते हैं। कुंभ पर्व में स्नान करने से 1,000 अश्वमेध, 100 वाजपेय और पृथ्वी की 1,00,000 परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है। इसके साथ ही एक कुंभ स्नान का फल 1,000 कार्तिक स्नान, 100 माघ स्नान और नर्मदा पर 1,00,00,000 वैशाख स्नान समान है। कुंभ पर्व के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के कारण जो वैज्ञानिक ऊर्जा निर्माण होती है वह कुंभ पर्व स्थल के जल प्रवाह में प्रवाहित होती है। अतः नदी के प्रवाह में स्नान करने से उस जल स्पर्श से वो ईश्वरीय ऊर्जा हमारे शरीर में भी प्रवाहित होने लगती है। कुंभ पर्व के काल में आप तत्व की अर्थात जल की पुण्य तरंगे सर्वत्र फैल जाती है। इससे मानव के मन का शुद्धिकरण होने में सहायता होती है। मन की शुद्धि होने से मन के विचार सात्विक बन जाते हैं। उन विचारों के कारण कृति भी फलदायी होती है। इसीलिए कृति और कर्म दोनों शुद्ध होते हैं। कुंभ मेले में स्नान करने का क्रम इस प्रकार होता है। सर्वप्रथम सूक्ष्म रूप में देवता स्नान करते हैं, तदुपरांत सत्पुरुष संत महंत स्नान करते हैं और उसके बाद ही सभी श्रद्धालु वहां स्नान करते हैं। कुंभ पर्व में सत्पुरुषों के स्नान करने के पीछे का कारण क्या है वो देखेंगे। कुंभ मेले के समय सत्पुरुष गंगा में स्नान करते हैं कारण उस समय औरों के स्नान के कारण अशुद्ध हुई गंगा सत्पुरुषों की चैतन्य शक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है। ऐसे इस कुंभ स्नान की अद्वितीय महिमा हमने देखी। अब निश्चित रूप से हम में से अनेकों के मन में विचार आया होगा कि हमें भी कुंभ स्नान का अवसर मिले। हम सभी के मन का ये विचार जानकर भगवान ने हम पर कृपा वर्षाव किया है। अब हम एक सुंदर भावार्चना के माध्यम से मानस रूप में प्रयागराज कुंभ पर्व की अनुभूति लेंगे। वहां के राजयोगी स्नान के निमित्त से साधु संतों की निकलने वाली शोभा यात्रा तथा राजयोगी स्नान के उन दिव्य क्षणों की हम अनुभूति लेंगे। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करते ही भगवान ने हमें प्रयागराज पहुंचा दिया है। कुंभ मेले में राजयोगी स्नान का अर्थात शाही स्नान का मंगल दिन आ गया है। विविध अखाड़ों के साधु संत अपने अखाड़ों के साथ संत एवं शिष्यों के साथ स्नान करने वाले हैं। इसके साथ ही सहस्रों नागा साधु महंत महामंडलेश्वर आचार्य योगी साधुओं के विविध प्रसिद्ध संप्रदाय और उनके अनुयायी ऐसे अनेक लोग राजयोगी स्नान का लाभ लेंगे। वे सभी शोभा यात्रा के माध्यम से गाते बजाते गंगा तट पर पहुंचेंगे। यह दिव्य दृश्य देखने के लिए, उसे प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए हम आतुर हो गए हैं। मानस रूप से हम गंगा के तट पर पहुंच गए हैं। बहुत सवेरे से स्थानीय श्रद्धालुओं की चहल पहल शुरू हो गई है। वे सभी इन साधु संतों के स्वागत की तैयारी बड़े ही भक्ति भाव से कर रहे हैं। शोभा यात्रा का मार्ग रंगोलियों और फूलों की पंखुड़ियों से सजा रहे हैं। अनेक स्थानों पर पुरुष फूलों का हार हाथ में लेकर और सुहागिने आरती की थाली लेकर खड़ी है। साधु संतों के स्वागत के लिए अनेक स्थानों पर बड़े बड़े फलक भी लगे दिखाई दे रहे हैं। उनमें से कुछ पीले रंग के बैनर भी लगे दिखाई दे रहे हैं। उन बैनरों ने हमारा ध्यान आकर्षित कर लिया है। क्या विशेष है उन फलकों में, इसका विचार कर ही रहे थे कि उस पर लिखे अक्षर हमें स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। सनातन संस्था उन बैनरों को देखते ही गुरुदेव जी का स्मरण होने लगा। हम सभी का भाव जागृत हो रहा है। अब हम सर्वत्र देख रहे हैं कि शोभा यात्रा आरंभ होने से पहले ही मार्ग के दोनों ओर विशाल जनसमुदाय एकत्र है। प्रत्येक के मुख पर उत्साह झलक रहा है। सर्वत्र दृष्टि डालने पर हमने देखा कि बड़ी संख्या में स्वागत फलक सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये देख हमें बहुत ही आनंद हो रहा है। देखते ही देखते सवेरा हो गया। क्षितिज पर सूर्य नारायण के आगमन का समय हो गया। संपूर्ण वातावरण मंगलमय प्रतीत हो रहा है। राजयोगी स्नान के लिए जाने वाली शोभा यात्रा हमें दूर से दिखाई दे रही है। हम गर्दन उचका कर उत्सुकता से वो शोभा यात्रा देख रहे हैं। वाद्यों के मंगलमय मंजुल नाद में वो शोभा यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मार्ग में दोनों ओर खड़े श्रद्धालु शोभा यात्रा के साधु संतों पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। मार्ग में जगह जगह पर सुहागिने उनकी आरती उतार रही है। उसका स्वीकार करते हुए सजे हुए स्वागत द्वारों में से शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। कुछ स्थानों पर मार्ग के दोनों ओर श्रद्धालु ध्वज लिए खड़े हैं। साधु संतों का पारंपरिक पद्धति से स्वागत कर रहे हैं, उनके दर्शन ले रहे हैं। अब मार्ग पर से एक के बाद एक आखाड़ा संत महंत और उनका शिष्य परिवार इस प्रकार शोभा यात्राएं आगे बढ़ने लगी है। हमारा ध्यान एक शोभा यात्रा की ओर गया। वह शोभा यात्रा किसी महामंडलेश्वर स्वामी जी की है। वे अपने अनुयायियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सनातन धर्म के जयघोष के निनाद में पांच सुहागिने महामंडलेश्वर की आरती करती हुई दिखाई दे रही है। हम भी सनातन धर्म के उस जयघोष में अंतर्मन से सम्मिलित हुए हैं। आरती पूर्ण होते ही शोभा यात्रा आगे बढ़ने लगी है। कुछ शोभा यात्राओं में हाथी पर बने मंडप युक्त हौद यानी अंबारी में उस संप्रदाय के प्रमुख बैठे दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्वामी ट्रैक्टर ट्रॉली पर बनाए गए रथ में आरूढ़ हैं। उनके अनुयायियों ने उनके मस्तक पर छत्र पकड़ा है। मन को आह्लादित करने वाली तथा वाद्यों की मंजुल ध्वनि में आगे बढ़ती हुई इन शोभा यात्राओं के कारण संपूर्ण वातावरण एकदम बदल गया है। ढोल नगाड़े इत्यादि वाद्यों का निनाद सर्वत्र गूंज रहा है। इसके साथ ही हर हर शंकर, जय गौरी शंकर, हर हर महादेव, जय गंगा मैया की इन घोषणाओं से आसमान गूंज रहा है। शरीर को भस्म लगाए हुए सहस्रो नागा साधु गले में फूलों की माला और ध्वज पताका लेकर निकल पड़े हैं। राजयोगी स्नान के निमित्त से निकलने वाली ये साधु संतों की शोभा यात्रा तप, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि दैवीय गुणों की शोभा यात्रा सी प्रतीत हो रही है। जैसे साधु संत राजयोगी स्नान के लिए जा रहे हैं, वैसे ही उनकी शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर गांव गांव से विविध देशों से आए श्रद्धालु भी चल रहे हैं। वे भी राजयोगी स्नान के निमित्त से निकली शोभा यात्रा का आनंद लूट रहे हैं। एक एक कर विविध शोभा यात्रा गंगा के तट पर पहुंच रही है। घाट पर से गंगा के पात्र में उतरकर साधु संत और अनुयायी स्नान कर रहे हैं। कोई सूर्य को अर्घ्य दे रहा है तो कुछ गंगा के पवित्र जल में खड़े रहकर जल का चैतन्य लूटते हुए आनंद ले रहे हैं। अन्य उस पवित्र जल में डुबकी लगाने का आनंद ले रहे हैं। उन सभी के पीछे पीछे अब हम भी गंगा घाट पर एक एक सीढ़ी उतर रहे हैं। हमारे सामने पवित्र गंगा का विशाल पात्र और उसकी बहती पावन जल धाराएं दिखाई दे रही हैं। उन जल धाराओं की ओर देखकर हमारा हृदय भाव विभोर हो गया है। गंगा माता को हम मनोमन भावपूर्ण नमस्कार करेंगे। अब हम गंगा माता के प्रति असीम भाव हृदय में संजोकर धीरे से उस पवित्र गंगा जल को स्पर्श कर रहे हैं। इतनी ठंडी में भी वो जल कुछ कुछ उष्ण सा प्रतीत हो रहा है। उस जल का स्पर्श होते ही हमारी संपूर्ण देह में चैतन्य की संवेदना वेग से प्रवेश कर रही है। हमारी संपूर्ण देह पर उस चैतन्यमय जल स्पर्श से रोमांच उठ रहा है। अब और एक सीढ़ी नीचे उतरकर हम गंगा माता की उस पावन अमृत धारा के स्पर्श का आनंद ले रहे हैं। हमें ध्यान में आ रहा है कि हमारी देह और हमारा मन गंगा माता के जल स्पर्श से शुद्ध और पवित्र हो रहा है। भाव और आनंद ऐसी मन की इस सम्मिश्र अवस्था में अब हम गंगा माता से प्रार्थना कर रहे हैं। हे गंगे, हे पवित्रता की साक्षात मूर्ति गंगा माते, अखंड प्रवाहित होने वाली आपकी पवित्र अमृत धारा इस विश्व के समस्त श्रद्धालुओं का आधार है। हे गंगे, हमारे दोष, अहम, भवताप, पाप सभी कुछ आपके जल में विसर्जित हो जाए। हमें भी आपके समान पवित्र, निर्मल और शुद्ध बनाए। हे लोकमाते, आपके समान ही हमारा अंतरंग भी भगवान के नाम से, उनके अनुसंधान से व्याप जाए। हमें भी पवित्रता की अनुभूति हो। हे माते, हम सभी आपकी जय जयकार कर रहे हैं। आपकी अखंड और अखंड जय जयकार हो गंगा माते। जय 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 गंगे, जय भागीरथी, हर गंगे भागीरथी। अब राजयोगी स्नान संपन्न हुए साधुओं के जत्थे अपने अपने तंबुओं में लौट रहे हैं। हम गंगा माता के दिए उस विशुद्ध अनुभव से सराबोर होकर वही रुक गए हैं। गंगा तट पर से लौटने के लिए हमारे कदम ही नहीं उठ रहे। भगवान श्री विष्णु और गंगा माता की कृपा से हम मानस रूप में गंगा स्नान कर पाए, इसके लिए हम उनके श्री चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। आज हमें इस भक्ति सत्संग के माध्यम से गुरु कृपा से घर बैठे मानस गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी वहाँ के चैतन्य की अनुभूति ले पाए। इसी से ध्यान में आता है कि अंतकरण के भाव का कितना महत्व है। इसी के साथ भावार्चना के माध्यम से हमारी देह और मन प्रयागराज संगम तीर्थ पर भावपूर्ण स्नान से शुद्ध पवित्र होने की हमने अनुभूति ली। इसमें भी अंतकरण का भाव ही प्रधान है, ये ध्यान में आता है। यही हमें और स्पष्ट हो इसलिए हम गुरु शिष्य की एक सुंदर कथा सुनेंगे। इस कथा से ज्ञान बोध लेकर भगवान की ज्ञान गंगा में गोते लगाएंगे। बहुत पहले शास्त्राभ्यास करने के लिए गुरु के घर रहना पड़ता था। छोटी आयु में ही लड़के वहां जाते थे। शास्त्राभ्यास पूर्ण किए बिना गुरु के घर से नहीं लौटना है, यानी घर नहीं जाना है, ऐसी प्रथा उस काल में थी। उस समय की बात है, एक गुरु का आश्रम था। उस आश्रम में वे अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु ग्रह रहकर सेवा साधना करना और अधिकाधिक समय शास्त्राभ्यास करने में बिताना, ऐसा उनका नियम था। इसी दिनक्रम में बहुत से वर्ष बीत गए। उनमें से कुछ शिष्य एक ही प्रकार की दिनचर्या से उब गए थे। एक दिन एक शिष्य के मन में विचार आया, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर आना चाहिए। उसने ये विचार कुछ अन्य शिष्यों को भी बताया। वह बोला, हम तीर्थ यात्रा पर जाकर आए, इससे थोड़ा परिवर्तन मिलेगा और हमें तीर्थ यात्रा का पुण्य भी मिलेगा। उसका ये प्रस्ताव अन्य शिष्यों को भी अच्छा लगा। फिर सभी ने एकत्र आकर निर्धारित किया कि वे तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए गुरु से पूछेंगे। सभी शिष्य एक साथ गुरु के पास गए, अपने विचार गुरुजी को बताए। गुरुदेव, हम सभी की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा है, हम तीर्थ यात्रा के लिए जाए क्या? आपकी अनुमति लेने आए हैं। गुरु ने शिष्यों की पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने पूछा, तुम सब तीर्थ यात्रा पर क्यों जाना चाहते हो? इस पर पहले शिष्य ने सभी की ओर से उत्तर दिया। वह बोला, हमने सुना है कि तीर्थ क्षेत्र में जाकर स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि तीर्थ क्षेत्र जाकर स्नान करें और अपने सभी पाप ताप नष्ट करें। इससे शास्त्राभ्यास में हमारी प्रगति होगी। आपकी अनुमति हो तो तीर्थ यात्रा कर आएंगे। शिष्यों की ये बात सुनकर गुरु ने कुछ क्षण विचार किया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को तीर्थ यात्रा के लिए जाने की अनुमति दी। शिष्य बड़े आनंद और उत्साह से यात्रा की तैयारी में लग गए। सभी तैयारियां हो गई। आखिर में यात्रा का दिन आ गया। गुरु अपने शिष्यों का उत्साह और उनकी तैयारियां देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन एक लीला करने की सोची। तीर्थ यात्रा के लिए निकलने से पूर्व शिष्य अपने गुरु से विदा लेने आए। गुरु ने पूछा, जो जो आवश्यक है वो सब साथ ले लिया है ना? शिष्यों ने हाँ कहा और गुरुवर को प्रणाम कर तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे। तब उन्हें विदा करते समय गुरु बोले, तुम सभी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, ये अच्छी बात है। अब जा ही रहे हो तो ये करेला अपने साथ लेकर जाओ। ऐसा कहते हुए गुरु ने उनमें से एक शिष्य को एक करेला थमा दिया। सभी शिष्यों ने उस करेले की ओर देखा और फिर अपने गुरु की ओर देखने लगे। उनके मन में प्रश्न उठा कि गुरुदेव ने ये करेला क्यों थमा दिया? तीर्थ यात्रा के समय इस करेले का क्या करेंगे? उनके मन का प्रश्न गुरु समझ गए। वे आगे बोले, इस तीर्थ यात्रा के समय तुम जहाँ जहाँ जाओ, जिस मंदिर में भी जाओ, इस करेले को भगवान के चरणों में रखना, भगवान का आशीर्वाद लेना, फिर पुनः करेले को अपने साथ रखना। उसी प्रकार यात्रा में तुम जहाँ जहाँ स्नान करो, वहाँ इस करेले को भी पानी में डुबकी लगा देना। एक बात का ध्यान रखना कि आश्रम लौटते समय करेले को भी अपने साथ अवश्य ले आना। गुरु की आज्ञा मानकर शिष्यों ने वो करेला अपने साथ ले लिया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। वे जिस पावन क्षेत्र में भी जाते, वहाँ की नदी में स्नान करते समय उस करेले को भी डुबोते। प्रत्येक मंदिर में जाने पर भगवान के चरणों पर उस करेले को रखते, उस देवता का आशीर्वाद लेते और करेला लेकर वे पुनः अगले क्षेत्र में जाते। इस प्रकार तीर्थयात्रा पूर्ण कर वे शिष्य गुरुगृह में लौट आए। गुरु को समाचार मिल गया कि शिष्य अपनी तीर्थयात्रा से लौट आए हैं। गुरु 4 दिन उनसे जानबूझकर नहीं मिले। इन 4 दिनों में गुरु ने अपने शिष्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। 5वें दिन गुरु ने तीर्थयात्रा पर गए शिष्यों को मिलने के लिए बुलाया। उन सभी को देख गुरु ने आनंद व्यक्त किया और पूछा, यात्रा कैसी रही? उन सभी शिष्यों ने बड़े आनंद और उत्साह से गुरु को यात्रा का सर्व वृत्तांत सुनाया। तदुपरांत गुरु ने उनसे पूछा, तीर्थ यात्रा के लिए जाते समय मैंने तुम्हें एक करेला दिया था, उसे तुम साथ में लाए हो ना? कहाँ है वो करेला? शिष्यों ने वो करेला गुरु को दिया। गुरु ने उस करेले की ओर देखा और बोले, बहुत अच्छा, ये अच्छा किया तुम बिना भूले करेला ले आए। अब ऐसा करो, इस करेले की सब्जी बनाओ और भोजन के समय मुझे परोसो। गुरु ऐसा करने के लिए किस लिए कह रहे हैं, ये उन शिष्यों के ध्यान में नहीं आ रहा था। गुरु की आज्ञा मानकर उन्होंने उस करेले की सब्जी बनाई और अपने गुरु को परोसी। गुरु भोजन के लिए बैठे, पहला निवाला मुंह में डालते ही वे बोले, बड़े ही आश्चर्य की बात है, ये करेला कड़वा है। शिष्यों के ध्यान में नहीं आ रहा था कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मुख पर ऐसा भाव था कि करेला कड़वा है तो इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात है। गुरु आगे बोले, इतनी तीर्थ यात्रा करके आने के पश्चात ये करेला अब भी कड़वा ही है। अब शिष्य सोच में पड़ गए कि गुरु ऐसा क्यों कह रहे हैं, कड़वापन तो करेले का प्राकृतिक गुण है। वे दबी आवाज में आपस में चर्चा करने लगे, तीर्थ यात्रा का करेले से क्या संबंध, करेला तो कड़वा ही रहेगा ना। उनकी कानाफूसी गुरु के कानों में भी पड़ी। गुरु हंसे, फिर अपने शिष्यों को समझाते हुए वे बोले, मैं तुम्हें वही तो बता रहा हूँ। इतनी तीर्थ यात्रा की, पावन स्थानों पर भगवान के चरणों में उसे रखा, नदियों के पवित्र जल में डुबकी लगवाई, परंतु इस करेले में कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। शिष्यों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। गुरु आगे बोले, इसका अर्थ ये है कि इतनी तीर्थ यात्रा करने पर करेले में तनिक भी अंतर नहीं पड़ा, वह कड़वा का कड़वा ही रह गया, उसका स्वाद नहीं बदला। कड़वापन करेले का स्वभाव दोष तीर्थयात्रा करने के पश्चात भी वैसा ही रहा। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे संदर्भ में भी है। मैं पिछले 4 दिनों से देख रहा हूँ, तुम सभी के स्वभाव में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं हुआ है। विचार करने की पद्धति, स्वभाव के दोष, सब कुछ वैसे ही है। मूल स्वभाव में परिवर्तन न होने से तीर्थयात्रा का कोई लाभ नहीं होता। हमें ही स्वयं को बदलना चाहिए। हम यदि नहीं बदले तो दूसरा कोई भी हमें नहीं बदल सकता। शिष्य अपने गुरु की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वे लज्जित हो गए। तब उन सभी शिष्यों पर दृष्टि डालकर उन्हें धीरज देते हुए गुरु ने उपदेश किया। वे बोले, प्रतिदिन की एक ही प्रकार की दिनचर्या से तुम ऊब गए, उस विषय में तुम नकारात्मक हो गए, और थोड़ा परिवर्तन मिलने के लिए तुमने तीर्थयात्रा करने की सोची। ध्यान रखो, जीवन में कभी नकारात्मक विचार नहीं करना चाहिए। यदि तुम सकारात्मक विचार करोगे तो तुम्हारे व्यक्त होने वाले विचार संगीत का रूप धारण करेंगे, मधुर लगने लगेंगे। वे विचार तुम्हें और तुम्हारे साथ जो भी है उन्हें आनंद देंगे। तुम सकारात्मक रहोगे तो तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि नृत्य समान मनमोहक होगी। वह सकारात्मकता तुम्हारे हृदय में उतरने पर तुम्हारा हास्य बहते निर्मल झरने समान प्रतीत होगा। वह सुमधुर और निर्मल होगा। सकारात्मकता के कारण तुम्हारी सभी कृतियां सहज और सुंदर होने लगेगी। तुम्हारे मन को सहजता प्राप्त होगी। इस प्रकार स्वयं में परिवर्तन लाने पर सकारात्मकता के कारण तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। तुम्हारा जीवन उत्सव बन जाएगा। इस प्रकार गुरु ने करेले के माध्यम से लीला रचकर शिष्यों को मनक शुद्धि, सकारात्मकता, इसका खरा ज्ञान दिया। गुरु का वह उपदेश शिष्यों ने मन से ग्रहण किया और उस अनुसार प्रयत्न करना आरंभ किया। इस सुंदर कथा के माध्यम से गुरुदेव जी ने हमें बहुत ही सुंदर ज्ञानबोध दिया है। इस विषय में अब हम देखेंगे। हम सभी अत्यंत शरणागत भाव से उस ज्ञानबोध की प्रचिति लेंगे। वह दिव्य ज्ञानबोध अब हम भी आत्मसात करेंगे। गुरु ने करेले के उदाहरण से शिष्यों को ज्ञानबोध दिया। कड़वापन करेले का गुणधर्म है। उसे भले ही कितना भी पानी में डुबाए, चीनी में घोले, देसी घी में तले, भगवान के चरणों में रखे, उसका गुणधर्म वैसे ही रहता है। उसी प्रकार हमारा मन भी होता है। उस मन के स्वभाव दोष और अहंकार जब तक नष्ट नहीं होते, तब तक मन शुद्ध नहीं हो सकता। और साधना में आगे जाना है तो मन की शुद्धता और निर्मलता महत्वपूर्ण है। यही गुरु ने इस माध्यम से अपने शिष्यों को सिखाया। इस कथा से भगवान ने हमें भी वही ज्ञानबोध दिया। स्थूल से कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर ले, कितने भी मंदिरों में जाकर भगवान के चरणों में माथा टेके, तभी जब तक अंतकरण में भाव नहीं उत्पन्न होता, अंतकरण में परिवर्तन नहीं होता, हमारा मन निर्मल नहीं होता, अर्थात हमारा मूल स्वभाव नहीं बदलता, तब तक तीर्थ यात्रा का कोई लाभ नहीं होगा। इसका अर्थ स्थूल से ये बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अपितु ये सब करते समय हमें अपने अंतर्मन की ओर देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अपने अंतरंग की शुद्धि महत्वपूर्ण है। करेले के उदाहरण से स्वभाव के लिए दवा नहीं, ये बात यद्यपि सत्य है, तभी सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी ने मन शुद्धि आत्मशुद्धि के लिए साधना सिखाकर उसके लिए रामबाण उपाय हमें दिया है। ये भी हम पर गुरुदेव जी की कृपा है। इसलिए अंतरंग शुद्धि के लिए हम श्री गुरु द्वारा सिखाई गई साधना कर स्वयं में परिवर्तन होने के लिए लगन से प्रयत्न करेंगे। गुरु का ज्ञानाधिकार बड़ा होता है। उन्हें अध्यात्म के सभी तत्व अवगत होते हैं, परंतु शिष्यों को सिखाते समय, उन्हें तैयार करते समय वे सरल शब्दों में विविध उदाहरण देकर ज्ञानबोध देते हैं, जिससे वे सहजता से समझ पाए। वे शिष्यों को जीवन के और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों के विषय में समझाकर बताते हैं। इसीलिए इस प्रसंग में उन्होंने शिष्यों को करेले का उदाहरण दिया। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव जी हमें साधना का बोध देने के लिए विविध उदाहरण देकर सरल भाषा में साधना के सभी तत्व समझाकर बताते हैं। इसलिए हमें समझने के लिए अत्यंत कठिन और गूढ़ अध्यात्म के रहस्य अब आसान लगने लगे हैं। ऐसे साक्षात ज्ञानमय ज्ञान शिरोमणि गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता भाव से वंदन करेंगे। वास्तव में जिसके जीवन में गुरु होते हैं वो सबसे भाग्यवान जीव होता है, कारण सद्गुरु के चरणों में ही सभी तीर्थ समाए हैं। इसलिए उसे अन्य कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती। गुरु के चरणों में ही रहकर श्रद्धा भावयुक्त मन से उनकी भक्ति और साधना करने से खरे अर्थ में उसका उद्धार होता है। उसे सभी तीर्थ यात्राओं का फल गुरु के चरणों में ही मिल जाता है। इसलिए जिस भाग्यवान जीव को गुरु मिले हैं, जिसके जीवन में गुरु है, उसे गुरु चरणों में निष्ठा से रहना चाहिए। गुरु जो बताए उसका आज्ञा पालन कर जीवन का उद्धार करना चाहिए। हम सभी ये अपने अंतर्मन पर अंकित करेंगे। गुरु के चरणों में ही हमारा सर्वस्व समाहित है। हमारा ध्येय, हमारा मोक्ष सब कुछ श्री गुरु के चरणों में ही है। इसलिए हमें भगवान को देखने और भगवान को ढूंढने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के रूप का स्मरण करने पर भी समस्त देवताओं के दर्शन और चैतन्य दोनों हमें मिल जाता है। वो ध्यान में रखकर हम निरंतर गुरु स्मरण में तल्लीन रहेंगे। इस कथा द्वारा गुरु ने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिया वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उपदेश हम भी अपने अंतर्मन पर अंकित करेंगे। गुरु कहते हैं, जीवन में कभी नकारात्मक विचार न करें, नकारात्मक चर्चा न करें। यदि आप सकारात्मक विचार करेंगे, सकारात्मक चर्चा करेंगे, तो आपके व्यक्त होने वाले विचार संगीत समान सुमधुर होंगे। आपकी प्रत्येक गतिविधि का रूपांतर नृत्य समान मनमोहक होगा। आपके हास्य का रूपांतर बहते हुए निर्मल झरने समान होगा। सकारात्मकता के कारण आपकी सभी कृतियां सहज सुंदर होने लगेगी। स्वयं में परिवर्तन करने के पश्चात सकारात्मकता के कारण आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। आपका जीवन उत्सव स्वरूप हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमारी दृष्टि सकारात्मक और भावभक्तिमय होगी तो उस दृष्टि में केवल भगवान का ही वास होगा। हमें यदि भगवान को देखने की इच्छा होगी तो हम जो भी देखेंगे उसमें भगवान के दर्शन हमें होंगे। भाव दृष्टि से देखने पर हम जहाँ भी जाएंगे वहीं भगवान दिखाई देंगे। अपना घर हो अथवा किसी और का घर, वह हमें भगवान का पवित्र मंदिर ही लगेगा। हम बाजार में भी गए तो हमें वो प्रयाग का मेला ही प्रतीत होगा। प्रत्येक नदी गंगा लगेगी, प्रत्येक स्नान गंगा स्नान ही लगेगा, प्रत्येक जल प्रयागराज के संगम का तीर्थ लगेगा। हम जो अन्न ग्रहण करते हैं वह प्रयाग मेले के अन्न छत्र का प्रसाद ही लगेगा। इस प्रकार सकारात्मक और भाव दृष्टि के कारण हम अपनी प्रत्येक कृति का और अपनी आंखों से दिखाई देने वाले प्रत्येक दृश्य का परिवर्तन ईश्वरमय होगा, इसकी हम अनुभूति लेंगे। ईश्वरमय हुई हमारी इस दृष्टि से हम कहीं पर भी घर बैठे भी कुंभ मेले का उत्सव हम अनुभव कर पाएंगे। वास्तव में महाकुंभ पर्व 12 वर्षों में एक बार ही होता है, परंतु हम भाव के स्तर पर विचार कर निरंतर प्रयत्नरत रहे तो हम जहाँ है वहाँ और वर्ष के 12 महीने हम महाकुंभ पर्व अनुभव कर पाएंगे। भाव दृष्टि से इसकी प्रचिति लेंगे। आज के इस दिव्य भक्ति सत्संग में सीखे अनुसार हम प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक क्षण मानस रूप में महाकुंभ पर्व अनुभव करेंगे। आज के सत्संग द्वारा इसी दिव्य ध्येय से प्रेरित होकर ध्येय प्राप्ति की दिशा में अखंड रूप से प्रयत्नरत रहेंगे। भगवान ने हमें आज के इस संपूर्ण सत्संग से, सत्संग के दिव्य विषय के माध्यम से मानो अमृत स्नान ही करवा दिया है। सत्संग के विषय का श्रवण कर मानो हमने अमृत स्नान ही कर लिया हो। भगवत भक्ति रूपी उस अमृत से हम सराबोर हो गए हैं। तो चलिए भक्ति सत्संग के समापन के समय भी अंतकरण को उसी भाव स्थिति में तल्लीन करेंगे। स्वयं पवित्र होकर अन्य को भी पवित्र करने वाली गंगा की महिमा हम भी अनुभव करें, ऐसा हम में से प्रत्येक को लग रहा है। ऐसे में स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म श्रेष्ठ, इस अध्यात्म के सिद्धांत की प्रचिति लेंगे। इसकी सत्यता अब हम अनुभव करेंगे। आज हम भक्ति सत्संग द्वारा अपने अंतर्मन को गंगा के तट पर लेकर जाएंगे। परम पावन गंगा की पवित्रता प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीन नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम का मनोरम दृश्य हम सभी अपने आंखों के सामने लाएंगे। उसके लिए परम श्री कृष्ण भक्त संत मीराबाई के माध्यम से भगवान हमें दिशा देने वाले हैं। वे हमें क्या बता रहे हैं इस विषय में समझ लेंगे। संत मीराबाई कहती है, चलो मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। संत मीराबाई साक्षात अपने प्रिय कृष्ण को अनुभव करने के लिए अपने मन को गंगा यमुना के तट पर लेकर जाती है और मन से कहती है, हे मन चलो गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर, उस दिव्य स्थान पर जाएंगे। गंगा और यमुना नदी के पवित्र तथा निर्मल जल के स्पर्श से हमारा संपूर्ण शरीर शीतल, निर्मल और पवित्र हो जाता है। इसीलिए हे मन चलो गंगा यमुना संगम के उस पवित्र तट पर जाएंगे। वहां बांसुरी बजाते हुए साक्षात कान्हा अपने भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कान्हा के साथ उनके भाई बलराम भी है। मोर मुकुट और पीतांबर धारण किए भगवान के कानों में कुंडल झलक रहे हैं। उस गिरिधर नागर भगवान के चरण कमलों पर नतमस्तक होकर ये मीरा उन्हें भक्ति भाव से नमन करती है। संत मीराबाई समान हम भी अपने अंतर्मन को लेकर प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम पर जाएंगे। अपने अंतर्मन को बताएंगे, हे मन तुम पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर चलो। हे मन गंगा और यमुना का ये जल अत्यंत निर्मल है, इसके स्पर्श से संपूर्ण शरीर शीतल, निर्मल और पवित्र हो जाता है। इसकी अनुभूति लेने के लिए हे मन तुम उस पवित्र संगम पर चलो। वहां अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते हुए बांसुरी बजाने वाले साक्षात कान्हा के दर्शन करने के लिए हे मन तुम उस पवित्र संगम स्थल पर चलो। हम सभी उस गिरिधर नागर भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होंगे। हम अपने अंतर्मन को पवित्र त्रिवेणी संगम पर ले जाएंगे और वो दिव्य भावस्थिति अनुभव करेंगे। भगवान की कृपा से ये दिव्य भक्ति सत्संग संपन्न हुआ, इसलिए हम भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।